गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार। आप लॉकडाउन में अपने आप को घर में रखकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ देश के एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दे रहे हैं और हम शीघ्र ही कोरोना से हिंदुस्तान हमारा शीघ्र ही निजात पा लेगा। इसके साथ ही हम अपनी पढ़ाई को भी लॉस में नहीं ले जा सकते, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हुए पहला चैप्टर जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इसके हम दो यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ पहले से कर चुके हैं। आज हम जिक्र करेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट में पहला एक चैप्टर है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये एक बेसिक चैप्टर है जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में भी हमने कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है। इसी में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, इसके क्या टूल्स होते हैं, इसका किस तरह से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। तो आप इसका जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट भी देने वाली हूँ। मैं आप सभी को एक कंपनीज हर एक को इंडिविजुअली एक ही कंपनी अलॉट करूँगी, उसका आपको एनुअल रिपोर्ट लास्ट 5 ईयर की कलेक्ट करके उन सबका रेशियो एनालिसिस आप आइडेंटिफाई करोगे और देन उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके आप वो मुझे असाइनमेंट वापस सेंड करोगे मेरे ईमेल आईडी पे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। एक्सटर्नल शेयर होल्डर यूज इट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस वैल्यू। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए, इसको चेक करने का जो है सबसे बेस्ट तरीका है, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है वो कंपनी। उसका ये ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि बेसिक इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस, जो टेक्निक्स है उसमें से अभी हम जिक्र कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस का। इसमें हम देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस जो फाइनेंशियल डेटास हैं उसका फाइनेंशियल डेटास की आपस में जो रिलेशनशिप है, जो कि कारण और परिणाम पर आधारित है, उसे संबंधित है। सो वी कैन से द रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल डेटा हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसमें मैं आपको ब्रीफ में, क्योंकि मैं एक PPT भेज रही हूँ, वो सारा डिटेल में दे रखा है। इसमें हमने उसको जितने रेशियोज़ हैं उसको क्लासिफाई कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमने उसको, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी से मीनिंग हो जाएगा कि उस कंपनी के पास में कैश की क्या पोजिशन है उसका, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब होगी, जब भी डिमांड है, तो उतना सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड होना कंपनी के पास ज़रूरी है ताकि उसकी रेपुटेशन और गुडविल मेंटेन की जा सके। इसमें हमने 2 रेशियोज, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, जिसको कि हम क्विक एसिड रेशियो भी कहेंगे, इन दोनों को शामिल किया है। तो क्विक रेशियो का एनालिसिस तो ये रहेगा कि क्विक रेशियो एटलीस्ट जितना भी उसकी करंट लाइबिलिटीज़ है उसका 2 टाइम्स, उसका दुगुना कंपनी के पास में करंट असेट्स होनी चाहिए, तो वी कैन से कि ये कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसी तरह से जो क्विक रेशियो है वो 1:1 तो होना चाहिए, लेकिन ये सब कंपनीज़ के लिए इक्वली इफेक्टेड नहीं होगा। ये डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री के एवरेज एनालिसिस पे। तो जो इंडस्ट्री है उसकी अगर हमने सपोज़ 5 कंपनीज ली है, तो उन 5 कंपनीज़ का जो करंट रेशियो आया है, सपोज़ किसी कंपनी का 2.5 है, किसी का 3.5 है, किसी का 1.5 है, तो उसका हम एवरेज निकालेंगे। अगर वो एवरेज 1.8 है तो आप उसका एनालिसिस करोगे कि एवरेज से अगर अबोव है देन दैट इज़ द बेटर, ठीक है, और जो एवरेज से भी कम है तो वो कंपनी अपना उतना लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसको इमरजेंसी के सिचुएशन में ये उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। और सेम इसी तरह का क्विक रेशियो हो जाएगा, जिसमें कि हम ऐसी असेट्स जो कि बहुत इजीली और कम टाइम में कन्वर्टेबल नहीं है, लाइक स्टॉक, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वहाँ पे 1:1 रेशियो है, वो भी सफिशेंट है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन भी सेम उसी तरह से होगा कि एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे और एवरेज के बेस पे आप चेक करते हैं कि किस तरह से अबो या बिलो एवरेज है उस कंपनी का, उसी तरह से इंटरप्रिटेशन करना होगा। देन हम सेकेंडली देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में इंक्लूड करते हैं हम कि कंपनी की सॉल्वेंसी कैपेसिटी क्या है, उसको जितनी भी उसके पास में लायबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट में उसको निभाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी के पास में कितना सफिशेंट असेट्स उसके पास में अवेलेबल है। तो इसमें आपके पास रेशियो आ जाएंगे डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मींस कंपनी की जो इक्विटी, तो उसकी ओन फंड हो गया और डेट पार्ट हो गया उसका बोरोड फंड। तो एटलीस्ट उसके पास जितनी इक्विटी है, उसकी ओन फंड है, उसका नेटवर्थ है, उसके डबल से ज़्यादा उसके पास में लोनिंग फंड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ उसकी सारी असेट्स अगर मॉर्गेज पे हो जाती है, क्योंकि लोन लेने के लिए उसको अपनी असेट्स को बोरो उसको मॉर्गेज पे रखना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही नेगेटिव और हार्मफुल हो सकती है। उसकी असेट्स सारी अगर मॉर्गेज पे है तो कभी भी उस कंपनी के लिए बैंक्रप्सी की सिचुएशन, उसकी डिस्ट्रेस उसके जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये डबल से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, जो टोटल असेट्स है उससे उसका क्या रेशियो है, उसका कितना टोटल असेट्स है उसके पास में और कितना उसका डेट पार्ट है। डेट पार्ट में सारे लॉन्ग टर्म फंड आ जाएंगे, जिसमें कि डेट प्लस बॉन्ड्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका भी सेम वही इंटरप्रिटेशन रहेगा। देन प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो में ओन फंड, जिसको प्रॉपर्टी फंड किसको बोलते हैं हम, शेयर होल्डर फंड को या नेटवर्थ को, उसका हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं टोटल असेट से। कंपनी का ओन फंड क्या है, उसकी सारी असेट्स कैसे उसकी कंप्राइज हुई है, कैसे कंसिस्ट है उसकी जो है असेट्स और नेटवर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितना ही ये हाई रेशियो होगा, दैट विल बी एडिकेट सेफ्टी, यानी क्रेडिटर्स के लिए उतना ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि असेट्स का जितना मैक्सिमम पार्ट में मिक्स रेशियो उसकी ओन फंड का है उतना ही अच्छा है। लोनिंग पार्ट कम होने से उसकी असेट्स पे इतना वो सेफ है, सारी असेट्स सेफ है, तो जो भी उसके ऑनर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उसका मनी सेफ है। तो ये हाई सेफ्टी जो है, हाई रेशियो एक सेफ्टी को इंडिकेट करता है उसके क्रेडिटर्स का, उसके शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये गियरिंग रेशियो बता रहा है गियर कौन सी होती है, जो कि डेट पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रेशियो है, जो कंपनी की फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज़ और वेरिएबल बेस सिक्योरिटीज़। फिक्स बेस में कौन सा आ जाएगा, जिसके ऊपर उसको एक फिक्स बेस से पे करना पड़ता है इंटरेस्ट या डिविडेंड, एक फिक्स अमाउंट से, फिक्स परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ अ फिक्स। लेकिन इक्विटी वी नो कि डिविडेंड उसके ऊपर ही फिक्स नहीं है, वेरिएबिलिटी होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, ये जो है बताता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी के पास अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, बूम पीरियड है, तो उसमें वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोनिंग फंड को, जो गियरिंग पार्ट है उसको इंक्लूड करके अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। लेकिन अगर जस्ट रिवर्स, रिसेशन का टाइम है, देन दैट कंडीशन में उसके ऊपर एक तरह का लोड हो जाएगा। अगर उसके पास में कंपल्सरीली उसको इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे उसका प्रॉफिट हो या नहीं हो, दैट सिचुएशन इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो लो गियरिंग मीन्स लेस रिस्क, लेस रिटर्न फॉर इक्विटी होल्डर। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट उसको इंटरेस्ट को पे करने में कितना सफिशेंट है, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना अमाउंट में अवेलेबल है, कितने टाइम्स उसको इंटरेस्ट सपोज पे करना 10,000 और कंपनी के पास EBIT है 1,00,000, इसका मतलब 10 times 10 गुना उसके पास में ऑलरेडी फंड अवेलेबल है, तो दैट इज़ अ मोर सेफ एंड सिक्योर। सो हम यहाँ सॉल्वेंसी रेशियो में यही चेक करना चाह रहे हैं कि उसके डेट पार्ट की क्या पोजीशन है और उसका जो है इंटरेस्ट, दोनों ही चीज़ हो गई, डेट पार्ट का प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट, उसकी सेफ्टी के लिए कंपनी के पास में कितना उसकी एबिलिटी है, कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी टू मीट विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है। देन इसका थर्ड, उसके बाद आप देखोगे इन सारे एक्टिविटीज़ रेशियो, जिसको कि हम वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ भी कह सकते हैं, जिसमें हम उसकी चेक कर रहे हैं कि उसकी कंपनी की कैपेसिटी क्या है, उसने कितने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से हैंडल किया है, उसने अपने रिसोर्सेज को कितने ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किया है, जो इसमें सारे रेशियोज आ जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसमें हम स्टॉक को बताएंगे कि कितना टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो कंपनी का जो है ये इंडिकेट करता है, हायर रेशियो इंडिकेट द मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट उसने कितना अमाउंट किया, उसके कितने टाइम उसकी सेल हो रही है, राइट। तो कंपनी की एबिलिटी है ये कि उसमें कम से कम अमाउंट इन्वेंट्री में ब्लॉक करके मैक्सिमम सेल्स जो है उसमें कन्वर्ट करने का, वो उसकी जो एबिलिटी है इसको बता रहा है। यानी कि अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर है तो वो इनएफिशिएंट है, और हाई अगर है तो वो कंपनी अच्छा सफिशिएंट एफिशिएंट कंपनी है, वो अपना कम अमाउंट ब्लॉक करके भी मैक्सिमाइज सेल जो है वो क्रिएट कर सकती है। डेट टर्नओवर रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो में इसका भी जो है आपका सेम आ जाएगा कि कंपनी अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करने की उसकी क्या एबिलिटी आ रही है। हाई रेशियो इज़ बेटर सिंस इट वुड इंडिकेट द डेट आर बीइंग कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, ठीक है। तो इसमें भी अगर हाई रेशियो आ रहा है तो वो बहुत फास्ट उसको इंक्लूड कर रहा है। देन क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अगर हाई रेशियो है then it is showing that the enterprise is not availing the full credit period, and low ratio indicate the longer payment period or delayed payment, तो जितना उसको payment करने में जितना time मिल रहा है that is the better for a company, जितना उसको fund pay करना है अपने suppliers को payment करना है उसको, अगर वो जितना time तक delay करेगा उसके पास में sufficient fund available होगा, वो अपनी जितनी भी fund की requirement है उसको वो बाहर depend नहीं रहेगा, और debtors में जितना ज़्यादा fast होगा उतना ही better है, क्योंकि debtors में क्या हो रहा है कि debtors का तो amount जो है वो उसको receive करना है, तो जितना जल्दी फास्ट वो कलेक्ट करेगा उतना ही कंपनी के पास वापस से फंड की रीअवेलेबिलिटी होती जाएगी और कैश कन्वर्जन का प्रोसेस चलता जाएगा और क्रेडिटर्स में रिवर्स हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का भी इसी तरह से होगा, वर्किंग कैपिटल और फिक्स असेट्स टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स सेल्स, उसका जो है सेल्स में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी वर्किंग कैपिटल की क्या उसकी एबिलिटी है, उसको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितने टाइम्स वो सेल को कर सकता है, तो हायर रेशियो इंडिकेट द हायर ऑफ द सेल्स। देन ये सारे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी सेम हो जाएगा। देन आपको लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको बताना है कंपनी की जितना कॉमन चीज़ है कि जितना उसका हायर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी उतना ही एफिशिएंट कंपनी है, उतना ही जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, एक बेसिक मेज़रमेंट है कंपनी की हम सक्सेस को मेज़र करने के लिए, प्रॉफिट इज़ द बेस्ट वे, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसकी उतना ही कंपनी उतना ही एबल कंपनी है, उतनी ही वो एफिशिएंट कंपनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट में वो केवल हमने यही बताया कि कंपनी का सेल्स में से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम, इन दोनों को हम लेके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है उसके बेस पे हम निकाल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या कैपेबिलिटी है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सेल्स है उसमें अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो माइनस करने के बाद अब क्या नेट प्रॉफिट अवेलेबल हुआ है, यानी केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अलावा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारा माइनस करने के बाद उसके पास क्या नेट प्रॉफिट अवेलेबल है उसके बिहाफ पे हम चेक कर रहे हैं। जितना उसमें ज़्यादा है तो वो उतना ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओ आई तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करते हैं, उससे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जो कि ये बता रहा है कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। अर्निंग पर शेयर, एक वन सिंगल शेयर पे उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है ये कैलकुलेट हो रहा है। सपोज़ टोटल उसके पास में प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 10 लाख का है और उसके पास में 1 लाख शेयर्स हैं तो 10 रुपी 1 शेयर हो गया, तो एक सिंगल शेयर पे उसकी क्या कंपनी की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ और मैटर करती है, जितने उसके पास में नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हैं, क्योंकि प्रॉफिट पे तो अगर सेम 2 ईयर का हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर उसके पास 1 लाख शेयर थे और अभी उसने बोरोड फंड जो है ज़्यादा इंक्लूड किया है, 50,000 ही नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, तो उसका पर शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 लाख अपॉन 1 लाख 10 रुपी उसका पर शेयर की वैल्यू आ रही थी। लेकिन अगर दिस ईयर में 10 लाख अपॉन 50,000 करेंगे तो वो 20 रुपीज़ में इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने उसके पास में वो बोरोड फंड पे ज़्यादा डिपेंड है और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कम है तो उसकी पर शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिविडेंड पर शेयर, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है आउट ऑफ ईपीएस में सपोज 10 या 20 रुपीज़ है तो उसका कितना परसेंटेज उसने उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 शेयर पे कितना डिविडेंड दिया गया है। और जितना ज़्यादा डिविडेंड है वो कंपनी को उतना ही उसकी गुडविल रेपुटेशन तो बढ़ेगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो उसको हम अच्छा इवैल्यूएशन करेंगे, उसको हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, जिस कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है, जिस कंपनी का डीपीएस ज़्यादा है, दोनों ही कम कंडीशन है। प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, इसमें फ्यूचर आस्पेक्ट हम देख सकते हैं कंपनी का, जो मार्केट प्राइस है उसको एमपीएस और ईपीएस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन का पता चलता है, मे बी अभी कंपनी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉफिट या उसकी मार्केट प्राइस जो है मतलब उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, बिकॉज अगर लोगों का उसमें ट्रस्ट है उस प्रोडक्ट में, उसकी क्वालिटी में, उनकी मैनेजमेंट टीम में, और उसका लगता है कि उसका जो ऐसा प्रोडक्ट नया कुछ उसने इस तरह का लॉन्च किया है, तो उसमें अगर पोटेंशियल जो उसके शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी के प्रोडक्ट में उनकी जो है वो ट्रस्ट, ये इसको बता रहा है कि कंपनी फ्यूचर में कितना आगे तक जाने वाली है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के बेस पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जितना ये ज़्यादा आ रहा है उतना ही कंपनी का ये बता रहा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कितना ट्रस्ट है इसमें, उनकी स्टेबिलिटी बता रहा है। तो हायर प्राइस अर्निंग रेशियो इंडिकेट द फेथ ऑफ इन्वेस्टर इन द स्टेबिलिटी एंड अप्रिशिएशन ऑफ कंपनीज अर्निंग। तो ये कुछ रेशियोज़ हैं, इसको हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार इसको पीपीटी आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, देन नेक्स्ट मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगी, और होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप किसी भी तरह से आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन कर सकते हैं, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल।